समुद्रों और नदियों में जो प्लास्टिक के कचरे की समस्या है, कितनी बड़ी है? कचरा कहाँ से आता है और कहाँ जाता है?
समुद्रों में सारा कचरा तो ह्यूमन कंजम्पशन से निकल के आता है. अब ह्यूमन कंजम्पशन शहरों में हो रहा है, गाँव में हो रहा है, सड़कों के किनारे हो रहा है, फैक्ट्रियों में हो रहा है. तो ये सारा कचरा अलग अलग लीकेज पॉइंट से नदियों में जाता है, ड्रेन्स में जाता है, और ड्रेन्स के ज़रिए ये समुद्रों में पहुंचता है. एट द सेम टाइम ओशंस में भी अपने लेवल पे कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है या पैसेंजर मूवमेंट हो रहा है. तो उन पैसेंजर वेसल से या फिर कमर्शियल वेसल से या फिर फिशिंग वेसल से या इवन नेवल वेसल से भी जो कचरा जनरेट हो रहा है वो भी समुद्रों में पहुंच रहा है. तो हम ये बात हर कोई समझता है कि प्लास्टिक्स नॉन बायोडिग्रेडेबल है. सो फ्रॉम अ पॉल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड जिसका इम्पैक्ट फाइनली जाके हेल्थ पर भी होता है, ये कंसर्न है कि ये एक ऐसा कचरा जनरेट हो रहा है जो तहे जिंदगी फॉर जनरेशन टू कम एनवायरनमेंट में बना रहेगा और अपने तरीके से उसका इम्पैक्ट होता रहेगा. कुछ प्लास्टिक्स में कुछ हैजार्डस या टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं. जब वो प्लास्टिक एनवायरनमेंट में रहता है, पानी में या ज़मीन में गड़ा हुआ है या लैंडफिल में है या एक खुले कूड़े के डंप में है, तो वो धीरे धीरे पानी से या किसी न किसी रूप से वो लीच होकर हमारे इकोसिस्टम में पहुंचता है. और किस पाथवे से वो उस इकोसिस्टम से आके हमारी फूड चेन में या हवा में पहुंचता है, इसके बारे में साइंस अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है. लेकिन ये बात जनरली समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट हमारी हेल्थ पे भी होता है.
तो ये जो कचरा समुद्रों में पहुंच रहा है, उससे किस तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है?
ये समस्या अब ग्लोबल स्तर पर, वैश्विक स्तर पर इस चीज़ को रिकग्नाइज किया जा रहा है. सबसे पहला इसका इम्पैक्ट, जो बहुत ऑब्वियस इम्पैक्ट है, कि आज की तारीख में मछलियों में के अंदर प्लास्टिक कचरा उनके शरीर के अंदर पाया गया है, उनकी इंटेस्टाइंस के अंदर पाया गया है, जो एक तरीके से एक चिंता का विषय है. मछलियाँ की जो एक नॉर्मल मरीन इकोसिस्टम है जहाँ पे वो विचरण करते हैं, वो भी डिस्टर्ब हो रहा है इस कचरे की वजह से. क्योंकि मछलियाँ हमारी फूड चेन का भी हिस्सा हैं, तो वो कचरा घूम के हमारे पास भी आ रहा है, हमारी फूड चेन में भी अब्सॉर्ब हो रहा है. दूसरा कंसर्न अब और जो बढ़ता जा रहा है वो माइक्रोप्लास्टिक्स को लेकर है. माइक्रोप्लास्टिक्स मतलब 5 मिलीमीटर्स से छोटे साइज का जो भी प्लास्टिक होगा उसको हम माइक्रोप्लास्टिक्स क्लासिफाई करते हैं. उससे भी और छोटा, तो अब नया बात हो रही है, नैनोप्लास्टिक्स की भी बात शुरू हो गई है. माइक्रोप्लास्टिक्स की पहुंच और भी ज़्यादा हो जाती है. छोटा साइज है तो वो और अलग तरीके से शरीर में घुसता है और शरीर से फिर और अंगों में फैलता है. इसके खिलाफ सॉल्यूशंस आसान नहीं है, इसका एस्टिमेशन भी बहुत मुश्किल है. तो ऑल इन ऑल ये सिचुएशन चिंताजनक सिचुएशन है. और यूनेप ने मरीन प्लास्टिक्स को लेकर एक तरीके से वैश्विक स्तर पे एक पहल बनाई है.
भारत में स्थिति क्या है और इससे निपटने के लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं यहाँ पर?
सो इस समस्या से निपटना तो बहुत बड़ी चीज़ है. इसमें जो पहल करी गई है वो अलग अलग लेवल्स पे करी गई है. कई सारे पॉइंट्स ऑफ इंटरवेंशन है. एक सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ इंटरवेंशन जिसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है वो तो पॉलिसी लेवल पे हो सकता है. तो हम लोगों ने पिछले साल 2018 में जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था, जिसमें इंडिया ने लीड ली थी, इंडिया ने ऑर्गेनाइज करा था, उसमें प्रधानमंत्री स्तर पे एक कमिटमेंट दिया था प्लास्टिक्स को कम करने का. एक मरीन लिटर सेल कॉन्स्टिट्यूट हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज में. और कई सारे प्रदेशों ने प्लास्टिक को बैन करने के लिए भी अलग अलग निर्देश निकाले हैं जो अलग अलग स्टेजेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन में चल रहे हैं. ये तो रेगुलेटरी इंटरवेंशन हो गया. इसके इन एडिशन टू दैट हम लोग भारत सरकार की तरफ से आज की तारीख में अलग अलग अर्बन लोकल बॉडीज़ को प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए या ओवरऑल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए फंडिंग बढ़ रही है. और क्योंकि इस पर चर्चा हो रही है तो एक कमिटमेंट बढ़ता जा रहा है और अलग अलग तरीके के सिस्टम्स और प्रयोग लागू करे जा रहे हैं. लेकिन ये अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस है. इन एडिशन इंडस्ट्री की भी पार्टनरशिप मांगी जा रही है. अब इंडस्ट्री की पार्टनरशिप प्लास्टिक वेस्ट, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के अल्टरनेटिव्स की तरफ से भी हो सकती है. एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो वो प्लास्टिक वेस्ट जनरेट कर रहा है वो उस वेस्ट को वापस ले, उसकी भी जिम्मेदारी तय करी जा रही है. और इसके अलावा प्लास्टिक वेस्ट रिसाइकलिंग के भी ऑप्शंस एक्सप्लोर करे जा रहे हैं. बट फाइनली द थिंग विल कम डाउन टू यूजर बिहेवियर चेंज. तो उस स्तर पे हमको कम्युनिटीज़, अलग अलग कम्युनिटीज़ के साथ, अलग अलग सेक्शंस ऑफ कम्युनिटीज़ के साथ इंगेज करने की ज़रूरत है.
तो यूनेप के जो ये प्रोजेक्ट्स हैं और ये जो कार्यक्रम हैं, इनसे क्या दूरगामी फायदे होने की उम्मीद है? आपको क्या लगता है किस हद तक ये इस समस्या से निपटने में मदद करेंगे।
यूनेप इंडिया ने 2019 में एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट काउंटर मेजर्स अगेंस्ट मरीन प्लास्टिक लिटर इन एशिया, साउथ एशिया एंड इंडिया इनिशिएट किया है। तो जो इंडिया वाला कंपोनेंट है उसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक पार्ट टेक्निकल है और एक पार्ट आउटरीच का है। इन दोनों चीज़ों को जब हम जोड़ देते हैं तो एक तरीके से एक 360 डिग्री व्यू से प्लास्टिक पोल्यूशन की प्रॉब्लम को देखा जा रहा है, उसके समाधानों के पे ऊपर चर्चा करी जा रही है। जब हम टेक्निकल की बात करते हैं तो आज की तारीख में ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिलना मुश्किल है जहाँ पर इंडिया स्पेसिफिक डेटा हमारे पास हो, प्लास्टिक वेस्ट की क्वांटिटी का, प्लास्टिक वेस्ट कहाँ कहाँ अक्यूमुलेट हो रहा है और किस तरीके से वो लीक होकर ड्रेन्स और नदियों के थ्रू समुद्र में पहुँच रहा है, उस पर रिसर्च हो रही है, उस पर स्टडीज़ हो रही हैं। इस प्रोजेक्ट में चार शहरों को आइडेंटिफाई करा गया है, गंगा बेसन को सेंट्रल लेकर हरिद्वार, आगरा और इलाहाबाद को में स्टडी करी जा रही है और मुंबई को, जिससे कि मुंबई में हमको दोनों रिवर और कोस्टल दोनों पर्सपेक्टिव्स मिल जाते हैं। जो दूसरा कंपोनेंट है वो आउटरीच कंपोनेंट है, जिसमें एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ स्टेक होल्डर्स के साथ एंगेजमेंट है। रेगुलेटरी स्टेक होल्डर्स हैं, कम्युनिटी है, फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, टूरिज्म सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सबके साथ एंगेजमेंट करने की कोशिश करी जा रही है, लोगों को सेंसिटाइज करा जा रहा है और कोलैबोरेशंस डेवलप करे जा रहे हैं जिससे कि ये मिलकर इस एरिया में कुछ पहल कर सकें।
जो यूनेप की बैठक आयोजित की गई थी उसमें किन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई और इस समस्या का समाधान हो सकेगा?
एक टेक्निकल कंसल्टेशन वर्कशॉप करी गई थी जिसमें अभी तक प्रोजेक्ट के जरिए जो जो टेक्निकल स्टडीज हुई हैं उसको शेयर करा गया था और इंस्टीट्यूशंस इंडिया स्तर पे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस ने इस एरिया में जो जो काम किया है उनकी उनके काम को शेयर किया, उनके मेथोडोलॉजीज को शेयर किया गया था। और इन एडिशन क्योंकि अर्बन लोकल बॉडीज जो हमारी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं जो रेगुलेटरी आर्म का एक अभिन्न अंग है, इनफैक्ट वेस्ट मैनेजमेंट के लिए की एजेंसी है गवर्नमेंट की, उनको भी इस डिस्कशन में लाया गया था। इसके अलावा जो काउंटर मेजर्स प्रोजेक्ट के सारे पार्टनर्स हैं वो ऑफकोर्स इस प्रोजेक्ट का इंटेग्रल हिस्सा थे। प्लास्टिक वेस्ट से रिलेटेड जो साइंटिफिक स्टडी है उसके ऊपर डिस्कशन हुआ, शेयरिंग ऑफ फाइंडिंग, उस फाइंडिंग्स आई हैं उनको शेयर किया गया, क्योंकि हमारा मानना है कि अगर हमारे को कोई पॉलिसी इंटरवेंशन प्लान करना है या पॉलिसी प्लान करनी तो उसके लिए एक साउंड साइंटिफिक बेसिस होना चाहिए और इस प्रोजेक्ट का टारगेट ये रहेगा कि साउंड साइंटिफिक बेसिस पर बोथ क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वान्टिटेटिव हम पॉलिसी को इन्फॉर्म कर पाएँ।